Thank you. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله 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 أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ugh.
La ilaha illallah, بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزرگان دین یہ تصوف اور سلوک پر ایک بہت ہی اہم کتاب مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم نے مرتب فرمائی ہے جس کا نام ہے محمود الاحسان. اس کا نام محمود حضرت مفتی صاحب کی نام کی طرف نسبت کی ہے. اس میں ماشاءاللہ فن تصوف اور سلوک اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے, مشائخ سلوک کے تجربات سے اور فن تصوف کے متعلق بہت ساری معلومات کو اس میں جمع کیا گیا ہے. حضرت مفتی صاحب نے الحمدللہ اس سفر میں جب ہم گئے تھے حاضری ہوئی تھی تو انہوں نے خود عنایت فرمائی تھی اور اس کا مختصر تعارف اس کتاب کا خود مفتی صاحب کی طرف سے ہی چھپا ہے اس قسم کے ورق کے اندر. تو کتاب کے ساتھ یہ ورق بھی رکھا ہوا ہے کہ بھائی اس میں کیا کیا مضامین اس کتاب کے اندر جمع کیے گئے ہیں. ماشاءاللہ میں نے دیکھا تو یہ بہت جامع کتاب ہے تصوف کے متعلق, کہ اس میں تصوف کا ثبوت, اذکار و اشکال, اخلاق حمیدہ, اخلاق ذمیمہ, اسی طرح تصوف کی تاریخ, اس پر کلام کیا گیا ہے. تو ہم نے سوچا کہ اسی میں سے پڑھ کر کے کچھ سنائیں تاکہ کتاب کا تعارف بھی ہو جائیں, خصوصاً علماء کرام کو اس کو منگائے بھی اور اس کو دیکھے بھی تو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. حضرت مفتی صاحب کی شخصیت سے تو سب واقف ہی ہیں ماشاءاللہ, کہ جو برسوں جامعہ میں صدر مفتی رہے اور تقریباً 50 سال سے زائد سے وہ تدریس کی خدمت وہاں انجام دے رہے ہیں, ہمارے بھی استاد ہیں. اور شیخ الحدیث بھی ہیں کہ اس وقت بخاری شریف بھی پڑھا رہے ہیں. نہیں بات, تو مفتی بھی ہیں, شیخ الحدیث بھی ہیں, شیخ طریقت بھی ہے, کہ ان کے یہاں رمضان میں بہت سارے معتکفین جمع ہوتے ہیں جامعہ کی مسجد میں اور 3-3 بار تراویح ہوتی ہیں, رمضان میں 3 ختم ہوتے ہیں. اس بیماری کے باوجود بھی وہاں اس سال بھی 3 ختم ہوئے, حضرت وہاں حاضر رہے. تو اتنی بڑی شخصیت ہیں, ان کا علم, ان کا تجربہ, اور تو انہوں نے اس میں ساری باتیں جمع کی ہیں. اب تصوف کا خلاصہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ بھائی ذکر و اذکار سے, دعا وغیرہ سے نسبت احسان کو حاصل کرنا, اللہ کا دھیان حاصل کرنا, بار بار سنتے ہیں ان تعبد اللہ کا انک ترہ, یہ کیفیت. اور دوسرا مقصد جو ہے اخلاق حمیدہ, اس کا حاصل ہونا اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہونا, یہ دوسرا مقصد ہے تصوف کا بہت بڑا. تو تصوف کے یہ 2 بہت بڑے مقصد ہیں, جس کو احسان بھی کہتے ہیں, طریقت بھی کہتے ہیں. تو یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جو راستہ ہے, اس راستے کو طریقت کہتے ہیں. वहाँ तक पहुँचने के लिए, इसीलिए इसको सुलूक भी कहते हैं। और जैसे आमाल ज़ाहिरा में चार मज़हब मशहूर हुए हम जानते हैं, हनफी, हम्बली, मालिकी, इसी तरह जो हैं इसमें भी चार सिलसिले जो हैं मशहूर हुए, क़ादरिया, चिश्तिया, सहरवर्दिया, नक्शबंदिया। तो हमारा सिलसिला चिश्तिया कहलाता है। तो बहरहाल तसव्वुफ़ का जो मकसद है वो इसमें जमा किया गया है तरतीबवार। बाबे दो अखलाक का बयान, देखिए मकसद जो हमने अभी कहा कि भाई अखलाक हमीदा का हासिल होना और अखलाक रजीला से पाक होना, ये भी एक मकसद है। तो अखलाक पर मुस्तकिल इसमें एक बाब है। बाब दौम अखलाक का बयान, अखलाक सब फितरी और जिबिल्ली हैं। दर्जे फितरत में कोई खुल्क न मज़मूम है न महमूद है, बल्कि मवाक़े इस्तेमाल से उनमें मदह और ज़म आ जाती है। अल्लाह ताला ने फितरी चीज़ें इंसान में रखी हैं, वो अपनी ज़ात के एतबार से अच्छी बुरी नहीं है, इस्तेमाल के एतबार से अच्छी और बुरी हो जाती है। मिसाल के तौर पर शुजाअत, बहादुरी एक फितरी खुल्क है, अच्छे काम में इसको इस्तेमाल करो तो वो अच्छी है, बुरे काम में इस्तेमाल करो तो बुरी है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला मिसाल के तौर पर इनमें शुजात का वस्फ था। इस्लाम लाने से पहले भी और इस्लाम लाने के बाद भी वो रहा, लेकिन इस्लाम लाने से पहले वो शुजात और बहादुरी जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती थी। अब जब इस्लाम ले आए जी, तो अब वही शुजात जो है इस्तेमाल होने लगी इस्लाम के लिए। तो अल्लाह पाक ने फितरी खुल्क, आदत, चिविल्लत इंसानों के अंदर रखी हैं। एक मिसाल देते हैं, इस्तेमाल के एतबार से मधु और ज़म आ जाती है। मन आता लिल्लाह व मन अलिल्लाह फ़कद इस्तकमल ईमानहु। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है, यानी जिसने अल्लाह ताला ही की रज़ा के लिए दिया और अल्लाह की रज़ा ही के लिए रोका तो इसका ईमान मुकम्मल हो गया। देखिए इसमें अल्लाह की रज़ा के लिए दिया और अल्लाह की रज़ा के लिए न दिया, दोनों तो भी उसका ईमान मुकम्मल हुआ। इसमें ऐता और मना दोनों के साथ लिल्लाह की क़ैद हैं, जिससे मालूम हुआ कि सखावत मुतलकन महमूद नहीं, न बुखला मुतलकन मज़मूम है, मगर बल्कि अगर अल्लाह के लिए हो तो दोनों महमूद हैं और अगर अल्लाह के लिए ना हो तो मज़मूम है। अगर सखावत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुरान शरीफ में ही है, वला तुबज़िर तबज़ीरा, वला तबसुत हा कुल्लल मस्त फतक उद मलूमम महसूर, कि बिल्कुल हाथ ना खोल दो, समझा ये बात, वला तुबज़िर तबज़ीरा। तो सखावत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक मौके में महमूद है, दूसरे मौके में मज़मूम। इसी तरह माल न देना, रोक लेना जी, एक मौके में बुरा है, बुखल समझा जाता है, लेकिन दूसरे मौके में यही अच्छा समझा। अब कोई बुराई का मौका है और कहे कि हमें पैसे दो जी, अब हम उसको पैसे नहीं देंगे। वतआवनु अलल बिर्र वत्तक्वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो देखिए अब यहाँ ये रोक रहा है, पैसे नहीं दे रहा है जी, लेकिन पैसे न देना ये भी किसके लिए हैं, अल्लाह के लिए। तो ये समझा रहे हैं। کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق ذمیمہ جن سے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے، یوں تو بہت ہے مگر اصول یہی ہیں جن کا آئندہ ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ، اور ان میں باہمی ایسا تعلق ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرے کا اور دوسرے کے ساتھ تیسرے کا۔ اسی لیے جب تک سبھی سے نجات نہ ملے اس وقت تک نفس قابو میں نہیں آئے گا۔ تو مطلب یہ کہ اخلاق کی رذیلہ سے پاک ہونا ضروری ہے، جب جا کر کے نفس قابو میں آئے گا، اور ایک کی اصلاح کرنا اور دوسرے سے بے پرواہ رہنا کچھ مفید نہیں ہوگا، کیونکہ جو شخص 10 بیماریوں میں گرفتار ہو وہ تندرست اسی وقت کہلا سکتا ہے جبکہ اس کی 10 بیماریاں جاتی رہیں۔ ایک آدمی میں 10 بیماریاں، سمجھیں یہ بات، اب وہ صرف ایک ہی کا علاج کراتا ہے اور باقی 9 سے غافل ہیں، سمجھیں یہ بات، تو اس کو تندرست نہیں کہتے، وہ تو بیماری کہتے ہیں، سمجھیں یہ بات، کہ بھائی ایک کا علاج کرایا، 9 تو باقی ہیں، 9 تو، سمجھیں یہ بات۔ اسی طرح ہمارے اندر بہت سارے اخلاق رذیلہ ہیں، سمجھیں، سب کو ایک ایک کر کے صاف کرنا ہے، سمجھیں یہ بات۔ ایک کی طرف توجہ دی، دوسرے اخلاق رذیلہ کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، تو ہم روحانی طور پر بیمار سمجھے جائیں گے، کہتے ہیں، سمجھیں یہ بات۔ جس طرح کوئی خوبصورت آدمی حسین اسی وقت کہلا سکتا ہے جبکہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، غرض سب اعضا مناسب ہو اور خوبصورت ہو، اسی طرح انسان کو حسن خلق اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ ان کی تمام باطنی حالتیں قابل تعریف ہو اور پسندیدہ ہو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہی ہیں، یعنی کامل مسلمان، جس کا خلق کامل ہو، اخلاق کامل ہو، اور مومن میں افضل وہی ہے جس کا خلق سب سے بہتر ہو۔ ابو داؤد شریف، ترمذی۔ بس اسی اصل کا نام دین ہے، اور اسی کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ نہیں، بعث تو معلما لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ السلام، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو کیا کروں، کامل کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ خلق اور خلق یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہیں خلق اور ایک ہیں خلق، یہ 2 لفظ ہیں۔ نہیں بات، خلق سے مراد یہ صورت ظاہری ہے، اور خلق سے مراد صورت باطنی ہے، کیونکہ انسان جس طرح جسم سے ترکیب دیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ، نہیں بات، چہرہ وغیرہ، اسی طرح جو ہے روح اور نفس سے بھی مرکب ہے۔ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک تو یہ جسم کے اعضا ہیں، اور دوسرا جسم کے اندر نفس اور روح ہیں، نہیں بات، اور اس کا ادراک بصیرت یعنی دل کی آنکھیں کرتی ہے۔ یہ ترکیب جی ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اور ان دونوں ترکیبوں میں حق تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو جدا جدا صورت اور شکلیں عطا فرمائی ہیں، جیسے کہ ظاہری صورتیں ہیں وہ آنکھ سے نظر آتی ہیں ہمیں، اسی طرح باطنی اخلاق جو ہیں یہ بصیرت کی آنکھ سے نظر آتے ہیں، سمجھیں گے، اللہ نے جدا جدا رکھا ہے۔ کوئی صورت اچھی ہیں، اسی طرح سیرت، سمجھیں گے بات، تو سیرت اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہے۔ تو ظاہری صورت اس کو صورت کہتے ہیں، حسین صورت، بری صورت، और बातिनी सूरत जो अंदर में होती है उसको सीरत कहते हैं। समझे बात? तो जिस तरह जो है ये सूरत अल्लाह की तरफ से हैं, इसी तरह रूह भी अल्लाह की तरफ से हैं। चुनाचे कुरान शरीफ में है, वनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, सूरह हिज्र के अंदर आयत मौजूद है कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर मैंने अपनी रूह को फूंक दिया। आयत करीमा में रूह को अपना कहकर जिक्र फरमाया। इसी तरह कुली रूह मिन अम्रे रब्बी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि रूह मेरे परवरदिगार का अम्र है जी। इसमें भी इसका इजहार फरमाया गया कि रूह ये अम्र रब है और जिस्म की तरफ और जिस्म की तरह ये सिफली और खाकी नहीं है, क्योंकि जिस्म की निस्बत मिट्टी की तरफ की गई है कि जी इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। बात बेशक मैंने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। सूरत की तरह सीरत के भी आज़ा है। तो जिस तरह हमारे सूरत के आज़ा हैं, यानी ये हाथ पैर आँख वगैरह, इसी तरह सीरत के अंदर भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें रखी गई हैं, रखी हैं। बातिनी क़ुव्वत वो क्या हैं? क़ुव्वत इल्म, क़ुव्वत ग़ज़ब, क़ुव्वत शहवत, क़ुव्वत अदल। नहीं बात, जिस तरह ये ज़ाहिरी आज़ा हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बातिनी क़ुव्वतें भी रखी हैं, जिसमें मेन क़ुव्वतें जो हैं बातिनी तीन हैं, क़ुव्वत शहवानिया, क़ुव्वत ग़ज़बिया, समझे ही बात, और क़ुव्वत अक़लिया। समझे ही बात? तो ये क़ुव्वतें जो हैं इसमें और भी किस्में हैं, समझे बात, इनमें एतदाल क्या है ज़रूरी है। अब इनमें एतदाल आ जाए, इसी का नाम क्या है? हुस्न खुल्क है। समझे ही बात? आगे और मज़ीद तफसील हैं। समझे ही बात? क़ुव्वत ग़ज़ब, क़ुव्वत शहवत वगैरह, तो इनमें एतदाल, क़ुव्वत ग़ज़बिया के एतदाल जो हैं इसका नाम शुजाअत हैं। अब ये जो क़ुव्वतें हैं इनमें एतदाल ज़रूरी है। क़ुव्वत ग़ज़बिया जो अल्लाह ने रखी हैं इसमें अगर एतदाल हो तो इसका नाम शुजाअत हैं, और यही अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हैं। क्यों? अगर इसमें ज़्यादती का ज़ुहूर हो तो इसका नाम तहूर होगा। अब अगर इसमें ज़्यादती आ गई तो फिर ज़ुल्म ज़ाहिर होगा। एतदाल से अगर शुजात हट गई तो फिर ज़ालिम आदमी बनता है। समझे बात? और अगर सुस्ती आ गई तो फिर ये क्या है? बुज़दिली है। इसको क्या कहते हैं? बुज़दिली। समझे बात? तो अब देखिए यहाँ पर शुजात ये क्या है? मतलूब है, जुल्म मतलूब नहीं। समझे बात? बुज़दिली ये भी मतलूब नहीं है। समझे बात? तो बहरहाल अब इसमें एतदाल कैसे पैदा होगा जी? गुस्सा जो है ये कैसे जब्त में आएगा? क़ुव्वत ग़ज़बिया तो रखी हुई है अल्लाह की तरफ से, लेकिन इसमें एतदाल क़ुव्वत ये इसको तसव्वुफ़ के अंदर सिखाया जाता है। इसी तरह क़ुव्वत शहवानिया है जी, शहवानिया इसमें भी एतदाल ज़रूरी है। अगर जो हैं इसमें एतदाल नहीं रहा, समझे ही बात, तो फिर हैवानियत आती है। समझे ही बात? फिर इसमें हैवानियत आती है। आपने देखा होगा कि हैवान भी अपनी शहवत पूरे करते और इंसान भी बुरी करता है, लेकिन हैवान जो है हलाल हराम इनके यहाँ कोई तमीज़ नहीं है ना, कोई तमीज़ नहीं, इनके यहाँ कोई निकाह नहीं। समझे ही बात? हैवान तो अपनी शहवत जहाँ चाहे पूरी कर लेता है, बल्कि एक जानवर तो वो हैं सब जानते हैं कोई इतना खबीस है कि वो अपनी माँ के साथ भी अपनी शहवत पूरी करता है, इसीलिए हमारे यहाँ उसका गोश्त हराम है। जी ये देखिए कि हैवान में कोई तमीज़ नहीं होती, समझे, हलाल हराम निका। हाँ, इंसान में तमीज़ होती है, को हलाल भी और हराम भी, समझे ही बात, एतदाल कि भाई महल भी है या नहीं, शहवत पूरा करने का वो महल भी है या नहीं, तो वो इसको इस्लाम ने सिखाया। इसीलिए आपने चौथे पारे में अखीरी रोकू देखा होगा, जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, पूरा रोकू देखिए आप कि ये शहवत का महल नहीं है, समझे, ये तो हैवानियत है, इंसान के यहाँ तो हदूद हैं। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती, ये सारा फहरिस्त बयान की। और अजीब कुरान का एजाज, समझे बात, कुरान ने एक छोटे से रुकू के अंदर बहुत सारे हुर्मत के असबाब को जमा कर दिया है, समझे बात, हुर्मत के असबाब, मिशकात की शरह जो है मिरकात बहुत अच्छी है, जब हम अल्हम्दुलिल्लाह मिशकात सानी बढ़ाते थे तो ये मुहर्रमात का बयान आता था, समझे बात, कि कौन कौन सी औरतें हराम हैं, मिशकात में है मुस्तकिल मुहर्रमात, तो मिरकात में इसके असबाब लिख के हैं, वो भी बच्चों को सुनाते थे, समझे बात, कि देखिए कुरान कितना जामे है। मिसाल के तौर पर एक सबब तो नसब है, समझे बात, एक सबब क्या है नसब, दूसरा सबब रजात है, समझे बात, तीसरा सबब मुसाहरत है, समझे बात, चौथा सबब जमा बैनल उख्तैन है, समझे बात, और पांचवा सबब जो है किसी के निकाह में होना, समझे बात, कुरान ने सबको जमा कर दिया। लेकिन कुरान ने ये नहीं कहा, देखिए इसी को मौजज़ा कहते हैं, समझे बात, हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि कुरान का एजाज दो है, समझे बात, एक तो एजाज उमूमी है, समझे बात, वो तो सब समझते हैं कि हज़ारों लाखों क्या हैं हाफिज़ है, समझे बात, ये तो उमूमी है, लेकिन एक खसूसी एजाज है, इसको उलमा समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुरान ने ये नहीं कहा कि ये सबब हुरमत का सबब यहाँ से यहाँ तक नसब है, यहाँ से रजात शुरू हो रहा है, वो तो हमें समझना पड़ेगा, उसके लिए मिरकात देखनी पड़ेगी, समझे बात, और मिरकात ने नकल किया है कहाँ से, फतहुल कदीर से, सुभान अल्लाह, हिदायत की शरह जो है ना फतहुल कदीर, वहाँ से नकल किया है साहिब मिरकात ने कि हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती, यहाँ तक हुर्रिमत का सबब क्या है नसब है, यहाँ तक नसब, समझाइए, अब आगे रजात है, समझ, उम्महातुकुम उल्लाती अर्दानकुम, समझे बात जी, और फिर आगे मुसाहरत है, खैर अभी मौका नहीं, मैं सिर्फ इशारा कर देता हूँ, समझे बात, कि कुरान जो है इतना जामे है, समझे बात, तो एतदाल कि भाई इस्लाम ने एतदाल को समझा कि इंसान में शहवत तो रखी है लेकिन शहवत हर जगह पूरी नहीं होगी, कि महल चाहे हलाल हो चाहे हराम, समझे बात, हाँ निकाह के बग़ैर महल हैं तो वो हराम है, इसको आगे बयान किया है, समझे बात, वलमुहसनात मिनन निसा इल्ला मा मलकत अईमानुकुम, आगे हैं, समझे बात, तो बहरहाल जी महल हलाल हो, समझे बात, और सबब जो है वो भी हलाल हो कि निकाह हो, समझे बात, बगैर निकाह के नहीं, तो कुव्वत शहवानियाँ तो रखी हैं अल्लाह की तरफ से लेकिन इसमें एतदाल हो, समझे बात, हलाल हो हराम हो, तो ये है, समझे बात, तो इसका एतदाल ये समझाया गया है। इसी तरह कुव्वत अक्लिया जो है ये भी अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर रखी है। लेकिन अब जो हैं कुव्वत अक्लिया में भी एतदाल कि वो हदूद के अंदर रहे, कुव्वत अक्लिया शरीयत की हद के अंदर रहे, समझे। अगर कुव्वत अक्लिया आगे बढ़ गई शरीयत की हद से, शरीयत की हद से जी, तो ये भी मतलूब नहीं है कि भाई जहाँ शरीयत की बॉर्डर आ गई वहाँ अपने अकल को पीछे रखेंगे, समझे। मैं तो बहरहाल मौलाना को तो समझाना ये है कि अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें इंसान के अंदर रखी हैं, इनमें एतदाल आ जाए, ये तसव्वुफ़ की लाइन में इसको सिखाया जाता है, समझे। मतलब एतदाल कैसे आए, जैसे कुरान शरीफ की आयत भी आगे लिखी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वाम। तो देखिए यहाँ पर एतदाल के खर्च तो करते हैं अल्लाह के नेक बंदे, व इबादुर रहमान, ये अल्लाह के नेक बंदे खर्च तो करते हैं लेकिन आँख बंद करके नहीं। वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़, समझा ईमान, वलम यक़तुरू, हाँ बुख़ल भी नहीं करते, वकान बैन ज़ालिका क़वाम, लेकिन दरमियानी राह को क्या करते हैं, वो इख्तियार करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक ने जो क़ुव्वतें रखी हैं हमारे अंदर, इसमें एतदाल आ जाए ये मतलूब है, समझा ईमान। तो अख़लाक रज़ीला ये अंदर से निकालना है और अख़लाक हमीदा इसको पैदा करना है, वो तो अल्लाह ही पैदा करते हैं, हमें मेहनत करती हैं। अब आगे इन्होंने फहरिस्त दी है अख़लाक हमीदा की, अख़लाक हमीदा के चंद मकामात हैं, इरादा, नीयत, इखलास, उन्स, तबलीग, तफक्कुर, तफवीज़, तक़वा, तवाज़ु, तौबा, तौहीद, तवक्कुल, खुशु, खौफ, दुआ, रजा, रज़ा, ज़ोहद जी, शुक्र, सिद्क, मोहब्बत वगैरह। तो ये हैं अख़लाक़े हमीदा। अब तरतीब वार इन्होंने इसको बयान किया है, पहली फ़सल इरादा और नीयत का बयान। मैंने कहा कि बहुत अच्छी किताब है माशाल्लाह, बहुत मेहनत से हज़रत मुफ्ती साहब ने इसको तसव्वुफ़ का ख़ुलासा इसमें जमा किया है। ये इतने अख़लाक हमीदा बयान किए तकरीबन 22 बात। अब इन्होंने तरतीब वार जो है इसको शुरू किया है नीयत और इखलास से, पहले नंबर पर नीयत और इखलास, और फिर जब ये बयान पूरा होगा तो इसके बाद ये बयान करेंगे अख़लाक ज़मीमा को, ये बुरे अख़लाक हैं जिनसे हमें खाली होना है। तो अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ नसीब फरमाए, उस पर अमल की तौफीक। इसी हमारे हज़रत मुफ्ती साहब के फतावा में कसरत से ये मिलेगा कि भाई अकाइद हक्का, आमाल सालिहा और अख़लाक हसना, इसको हासिल करना ज़रूरी है, फतावा महमूदिया में आपको मिलेगा। अकाइद हक्का और जो है आमाल सालिहा और अख़लाक हसना, इसकी जो ज़िद है इससे खाली होना ज़रूरी है, इसकी जो ज़िद है। अब जो है अकाइद हक्का, इसकी ज़िद क्या होगी, इसके ख़िलाफ़ अकाइद बातिला, अकाइद बातिला जी, और आमाल सालिहा के ख़िलाफ़ होंगे आमाल सैया, और अख़लाक हसना इसके ख़िलाफ़ होंगे अख़लाक रज़ीला। क़ुरान शरीफ इससे भरा पड़ा है, लेकिन क़ुरान ये नहीं कहेगा कि ये अकीदा हक़ है, यहाँ पर कहीं कहीं इशारा किया है, समझ नहीं, इशारा तो किया है, कहा है, लेकिन तरतीबवार नहीं, समझ। इसी तरह आमाल सालिहा, अख़लाक हसना, ये तो मुहद्दिसीन ने और उलमाए किराम ने, उलमाए किराम ने क़ुरान और हदीस में गौर फिक्र करके इसको जमा किया है, हमारे ऊपर एहसान किया है, समझ। तो अल्लाह ताला दीन की सही समझ हमें नसीब फरमाए और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। اسی کو حدیث شریف میں کہا نہیں کہ مَنْ يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ نشهد ان لا الہ الا اللہ نستغفر. اس کا نام محمود الاحسان، ڈابل سے ملتی ہیں یہ مکتبہ محمودیہ اور جگہ بھی پڑھ ملتی ہے.